चुनौतियां जो है वो कई लेवल पे होती हैं, कई स्टेजेस पे होती हैं। जैसे कि डिजाइन स्टेज हो गया, तो डिजाइन स्टेज पे डिजाइन लोड कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसमें कि प्रोमिनेंट जो है सबसे बड़ा तो होता है विंड प्रेशर। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है बिल्डिंग की, हवा का जो प्रेशर है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मच सो कि कुछ जगहों पे अगर हम देखेंगे, जब हम 90 फ्लोर या 100 फ्लोर जब हम एक्सीड कर जाते हैं बिल्डिंग्स में, तो टॉप फ्लोर को अगर हम फ्री छोड़ दें तो 10 से 15 फुट तक का स्वे, यानी ऊपर का जो फ्लोर है 10 से 15 फुट तक एकदम हिलता है टॉप वाला। तो ये विंड प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन अर्थक्वेक का जो लोड है, अर्थक्वेक के लिए बिल्डिंग को डिजाइन करना पड़ता है। तीसरा, बिल्डिंग का खुद का वेट इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसके लिए डिजाइन करना पड़ता है। तो ये तीन बड़ी चुनौतियां होती हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, और फिर फायर, फायर एस्केप और जो बेसिक जो रूल्स हैं, जो वो सारे भी हमको फॉलो करने पड़ते हैं उसके अंदर। और नए सिनेरियो में जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो खुद अपने आप को सस्टेन कर सके, ग्रीन, कार्बन फुटप्रिंट उसके कम से कम होने रहने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे फिर आज जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको डिजाइन करने में हमको देखना पड़ता है।
जी, और ये बताइए कि आज की जो टेक्निकल नो हाउ है उसके मद्देनजर लिमिट क्या है, क्या सीमा है? क्योंकि खबरें ये हैं कि टोक्यो में 2045 तक, मतलब अभी 20-30 सालों में, 1 मील ऊंची वो बिल्डिंग बनाने की योजना बना रहे हैं, और जो मतलब चाहे अर्थक्वेक हो या सुनामी हो, वो सबको देखते हुए इस तरह की एक बिल्डिंग बनाने की योजना बन रही है। तो व्हाट इज द लिमिट?
इसका डिजाइन रेडी है और दे आर जस्ट लुकिंग फॉर कि उसके प्रमोटर्स और जो फंडिंग है वो अगर अरेंज हो जाती है तो दे आर रेडी टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। इसको पूरा, यानी कि अब जो फ्यूचर है वो वर्टिकल है। जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस स्पीड से लैंड कम होता जा रहा है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रेशियो में लैंड का जो है वो कम होता जा रहा है। तो अब जो फ्यूचर है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल की जगह। तो यानी आने वाले समय में एक बिल्डिंग को एक सिटी की तरह देखा जाएगा अपने आप में। तो और टेक्नोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो जो कुछ बोल दिया गया है, यानी जो भी अगर हम हिस्ट्री देखें पिछले 150 साल की, तो जो कुछ हमने नॉवेल्स में पढ़ा, जो कुछ आम भाषा में डिस्कस किया गया है, जितना सोचा गया था उससे भी कम समय में उसको अचीव कर लिया गया है। यानी टेक्नोलॉजी जिस पेस से बढ़ रही है, जिस स्पीड से अपने आप को आगे बढ़ा रही है, जो भी हम बात करते हैं वो अचीवेबल है।
जी, अच्छा सिद्धार्थ, ये बताएं कि भारत में क्या ऐसी इतनी ऊंची, मतलब अमेरिका, दुबई या चीन में जिस तरह की इमारतें हैं, क्या आपको लगता है आगे वाले कुछ सालों में भारत में ऐसी इमारत बन सकती है? आपको लगता है अभी उसके लिए वक्त लगेगा?
भारत, एक बात तो ये है कि भारत का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है मेरे हिसाब से, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है अभी काफी समय लगेगा भारत में बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बनने में और उनकी रिक्वायरमेंट निकलने में, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली और बेसिकली जो पर कैपिटा इनकम है हमारी, ऊंची बिल्डिंग्स महंगी बिल्डिंग्स होती हैं, ये चीज तय है। तो पर कैपिटा इनकम देखें या उस पूरे ओवरऑल सीन में देखें कि टेक्नोलॉजिकली हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं जिन दो देशों का आपने नाम दिया है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जिस वक्त हम लोग अपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे 1857, उससे 10-20 साल का आप वो देखें, उस वक्त अमेरिका में लिफ्ट लग चुकी थी बिल्डिंग्स के अंदर, वो लोग उस वक्त भी 15 से 20 मंजिल की बिल्डिंगें बना रहे थे। तो हम लोग काफी पीछे हैं अभी इन चीजों में। चाइना को देखते हैं तो ये लोग ये काफी आगे हैं टेक्नोलॉजिकली, रिसोर्स वाइज, और सबसे बड़ी बात पैसे से। तो अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ जरूरत है, हमारे पास काफी लैंड भी है और हमारे पास अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इन चीजों को बनाने का, और उससे भी बड़ी बात उसके बाद में उसको सस्टेन करने का।
जी, अच्छा सिद्धार्थ, बस जाते जाते आपसे, क्योंकि आप खुद आर्किटेक्ट हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ आपकी कौन सी, अगर पिछले 100 साल 150 साल में मैं पूछूँ कि कौन सी वो दुनिया की ऊंची इमारतें हैं जो पाथ ब्रेकिंग रही हैं, मतलब जो भी उनकी हाइट रही हो, कि उस समय जब वो बनी थी तो लगा था कि ये तो बिल्कुल असंभव है, और अंत में मेरे ख्याल बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है आज के समय में, और आगे चलते मेरे ख्याल जेड्डा में कोई एक इमारत बनाई जा रही है जो शायद वो रिकॉर्ड तोड़ने का कोशिश करेगी, तो उसके बारे में बताएं।
जी, ये हम तो अभी देख रहे हैं, ये एक रेस की शुरुआत है जिसकी शुरुआत मेरे हिसाब से सीग्राम बिल्डिंग न्यूयॉर्क से हुई थी। नीज वैन डर रोह उसके डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट, बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे लास्ट सेंचुरी के, और लास्ट सेंचुरी के तीन सबसे बड़े नाम में से एक उनमें उनका शुमार होता है। तो आई थिंक सीग्राम बिल्डिंग ऐसी थी जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि जो ये ऊंची बिल्डिंग बनने के लिए जो दो मटेरियल सबसे ज्यादा जरूरत होती है जिनकी, वो है स्टील और कांच। वो उस बिल्डिंग उससे पहले भी यूज होते थे, लेकिन जिस तरीके से उस बिल्डिंग ने यूज किया और उसको जिस ब्यूटीफुली यूज किया, आज भी वो बिल्डिंग वहाँ पे है और यूज हो रही है और फुल्ली यूज हो रही है।
ये कब बात का जी, ये वाली जो आप बिल्डिंग का जिक्र कर रहे हैं,
ये 1930s में बनी थी, लेट 1930s के अंदर बनी थी सीग्राम बिल्डिंग
जी, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल
पहले। तो आप ये देख लीजिए कि इट हैज जी कि उसने टेस्ट ऑफ टाइम जो है वो पास किया इस बिल्डिंग में। तो आई थिंक ये पाथ ब्रेकिंग बिल्डिंग थी जिससे सब कुछ बदल गया और लोगों ने फिर एक्चुअली हाई ड्रीम करना शुरू किया
जी। और उसके आगे मेरे ख्याल फिर कई और बिल्डिंग्स बनी, ताइपे में भी मेरे ख्याल 101 नामक एक बिल्डिंग थी काफी, वो भी काफी और पेट्रोनास टावर मलेशिया में।
बिल्कुल, ये पूरी एक 25-30 बिल्डिंग की एक पूरा एक लिस्ट लाइन है ये एक के बाद एक। बट जैसा कि आपका सवाल था कि पाथ ब्रेकिंग जिसको बोलते है ना, कि जो जिसके बाद ये सब संभव हुआ
जी,
वो आई थिंक वो बिल्डिंग उसका नाम अपन ले सकते
जी। सिद्धार्थ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।